ग्यारहवा अपना प्रकरण चल रहा था गुणस्थान संबंधी। गुणस्थान की परिभाषा याद है? हाँ मंदा बेन, हाँ बोलिए। तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं, यानी ये जीव की अवस्थाओं का वर्णन है। वैसे तो संसारी जीव की सिद्ध तो गुणस्थानातीत होते हैं, तो उसमें से असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, फिर भी उसमें स्थूल रूप से 14 उसमें विभाजन किए, तो इनको 14 गुणस्थान हम कहते हैं। सबसे पहले मिथ्या तो गुणस्थान और उस जीव के परिणाम कैसे होते हैं उसकी हमने चर्चा की थी। जब यह जीव सम्यक तो प्राप्त करता है तो पहले से चौथे में जाता है, सामान्यता तो चौथे में जाता है, अन्य कोई जीव पांचवें में और सातवें में भी जा सकता है, उसकी भी हमने चर्चा की थी। तो चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? विरत सम्यक्त्व। पांचवे गुणस्थान का नाम देश विरत। तो ये तो हमने देखे थे। और दूसरे और तीसरे का नाम क्या है? सासाधन सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व। इन्हें पांच तक तो नाम याद हो गए, मिथ्यात्व, सासाधन, सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक्त्व और देश विरत। बराबर, इतनी समझ में आए? उसका स्वरूप भी हमने देखा था कि पांचवें गुणस्थान में कैसे 11 प्रतिमाएं होती है, अधिक अधिक बढ़ती हुई वितराग तेज के साथ बाह्य में भी उस जीव को कैसे कैसे व्रत के परिणाम होते हैं और व्रत कैसे कैसे होते रहते हैं, ये सारी चर्चा की थी। तो 11 प्रतिमाओं के नाम हमने कल देखे थे। चित्रा जी को याद नहीं है? अच्छा, दीपाली आपको? हाँ, दर्शन प्रतिमा, रोषद प्रतिमा, बराबर है। हाँ, सचित्त त्याग। हाँ प्रतिमा, हाँ वेरी गुड। उत्तिष्ठ त्याग प्रतिमा, बराबर। ऐसे ये 11 प्रतिमाएं। और किसकी याद है? हाँ, अनुमति यानी अनुमोद, उसको कोई व्यापार धंधा में उसको अनुमति, हाँ ऐसा करो वैसा करो, ऐसा जो अनुमति अनुमोदना करना, उसकी सम्मति दे, सम्मति देना उसको, यानी कोई गृह कार्य संबंधी उसको कोई पूछे तो उसमें अपनी सलाह देना, उसको कहते हैं अनुमति। हाँ, क्योंकि वो उसका सारा परिग्रह है या पाप के उससे चल रहा है, कुछ परिग्रह के बारे में वो अभी कमा रहा है या अन्य कोई विवाह वगैरह कर रहा है, अन्य जो कुछ, तो उसमें अनुमोदना उसको अनुमति देने से ये भी उसमें जुड़ गया ना, इसलिए क्योंकि अभी वो संसार से विरक्त हो गया, वो कुटुंब से भी इतना उसको अपने को वहाँ उसमें रस भी नहीं रहा उसको, तो इसलिए नहीं नहीं यार ऐसा धंधा करो ऐसा धंधा करो ऐसी कोई बात नहीं करेगा वो। हाँ ये शास्त्र की बात वो पढ़ाएगा, वो बच्चों को कहेगा ये आओ यहाँ सुनो ये कल्याण की बात है, अभी वो जरा कम करो धंधा, वैसे तो बताएगा तो वो धंधे की बात उसमें वो रस लेकर उसको कुछ अनुमति देना, उसको कुछ सलाह देना कैसा धंधा करना कैसे क्या, पहले भले ही इसने किया हो कोई एक्सपीरियंस ही हो तो उसके वो कोई उसको सलाह नहीं देगा। परिमाण का त्याग, परिग्रह त्याग लिखा है यहाँ, परिग्रह का त्याग है, और जो शुरू शुरू में करता है वो परिग्रह परिमाण करता है, वो तो दूसरी प्रतिमा से ही होता है, अनुव्रत के साथ साथ वो दूसरी प्रतिमा में आता है ना वो परिग्रह परिमाण। हाँ पांच अनुव्रत में भी है और फिर वो शिक्षा व्रत में भी देखा था हमने उसको, भोग को भोग परिमाण था वो, और ये पहले था तो परिग्रह परिमाण था, अभी जो ये उसने तो परिग्रह त्याग ही कर दिया, परिमाण नहीं है। मुनि का कैसा है कि उनके तीन कषाय का अभाव है और इसके दो कषाय के अभाव है, तो परिग्रह में थोड़ा कम है ना उसका, यानी त्याग कमती है, अभी दो ही कषाय का अभाव हुआ है, मुनि के तो तीन कषाय का अभाव, यानी अंतरंग परिग्रह उसका ज्यादा है, तो मुनि में और इसमें क्या डिफरेंस है ख्याल में है, और ये अभी घर में रहता है, ऐसा नहीं कि परिग्रह त्याग, वो अन्य बाह्य चीजें उसने सब त्याग कर दिए, व्यापार धंधा ये सारा उसने त्याग कर दिया, फिर भी हाँ मुनि संघ में ये हो सकता है कि मुनि संघ में भी रह सकता है, ऐसी बात है। यानी इसमें से कितने जो ऐसे श्रावक है व्रति श्रावक है वो मुनियों के संघों में भी उनके साथ साथ रहते, क्योंकि वहाँ उनको स्वाध्याय मिलता है, यानी मुनि के आचरण भी उनके साथ, उनको ऐसा लगता है ना कि श्रावकों के कि चलो अपन उनके साथ चले, क्योंकि अभी बाकी तो रस छूट गया सारा, परंतु उनको ऐसा नहीं, वो मुनि अब उनको ऐसे अलग सुलग नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी उनकी वितरकता उतनी बड़ी नहीं है, फिर भी वो उनके संग में रहते हैं, ऐसे श्रावक भी ऐसे अभी अपने गांव में कोई मुनि आए हैं तो उनके साथ हो सके दो तीन महीने उनके साथ विहार कर जाए, जहाँ जहाँ जाते हैं उनके साथ जाएंगे और वहाँ चौके भी लगाएंगे ऐसे, यानी क्योंकि वो खुद भी भोजन बना के खाएंगे ना, तो हो सकता है कभी मुनि का आहार उनके यहाँ भी हो जाए, या जहाँ जाते हैं गाँव में वहाँ हो जाए आहार, तो ऐसे मुनियों के संघ के साथ श्रावक भी यानी उनके साथ संघ में रहते हैं। तो ये तो हमने देखा था ना, अभी ये 92 पेज है, गुजराती में कौन सा है, क्योंकि वो 11वें पेज में 11वें प्रकरण में से कुछ दो पेज रह गए थे, लास्ट पैराग्राफ 92 का। एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ, मिला हाँ दीपाली गुजराती में मिल गया, देखो उसके ऊपर हमने देखा था कि लौकिक में हम देखते हैं वगैरह, वो लिखा कल सिखाया था ना, युद्ध भी करेगा स्त्री पुत्र परिवार भी होगा, ये हुआ था। देखो ये बीच में कषायन की जाति भी समझाई थी और नीचे वो बाह्य में देखा था कि बाह्य आचरण से गुणस्थान का अनुमान हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो युद्ध भी करेगा स्त्री पुत्र परिवार, स्त्री पुत्र परिवार भी होगा, ये हुआ था ना। हाँ क्यों, अच्छा वो फिर पढ़ लेते हैं, ऐसे कुछ उसमें गहरी बात नहीं है, फिर से दोबारा मिल गया वो लौकिक, लौकिक में हम देखते हैं कि दयादान व्रत पूजा यात्रा आदि करने वालों को धार्मिक कहा जाता है, यानी लोग उनको धार्मिक मानते हैं, हाँ ये बहुत धर्म कर रहा है। और वो खुद ही अगर उसको सच्चा धर्म क्या है पता नहीं है। सच्चा धर्म हमने देखा था, वीतरागता ही सच्चा धर्म है। जिसको वीतरागता प्रकट नहीं हुई है और जिसको उसके बारे में मालूम ही नहीं कुछ, तो वो मंदिर में जाना यात्रा करना इसी को धर्म मानता है और उसी में संतुष्ट होकर रह जाता है। लोगों को बाह्य त्याग की ही महिमा आती है, उसे ही व्रत संयम नाम दिया जाता है। वो कहते हैं ना, आपको क्या बोलने को, उनके पास संयम तो है ना, तो वो संयम के नाम के नीचे कुछ भी करे, तो लोगों का इसे वो बाह्य त्याग की महिमा आती है, क्योंकि उनको मुनि का सच्चा स्वरूप मालूम नहीं होने से ऐसी भ्रांति चलती है और वो झगड़े पर भी उतार आते हैं। जब चर्चा चलती है तब कौन से गुण स्थान में किस प्रकार के शुभ या अशुभ भाव हो सकते हैं, इसे जानने के बाद हमारी समझ में आता है कि कषाय की मंदता या तीव्रता पर गुणस्थान निर्भर नहीं है। बहुत मंद कषाय है तो ऊपर का गुणस्थान ऐसा है नहीं है, वो कषाय की जाति कैसी है उसको देखना पड़ेगा। ये कौन सी कषाय की चार जाति, हमने चार चौकड़ी देखी थी, नाम क्या है उसके सिपाही? हाँ और संजोलन, मैंने अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजोलन, ये चार जाति अलग अलग है। तो जाति कैसे पहचाननी? अनंतानुबंधी कहेंगे किसे, क्योंकि किसी के तो बहुत तीव्र क्रोध मान माए लोग हैं और अनंतानुबंधी के ही किसी के अत्यंत मंद है, क्योंकि मुनि व्रत जो धारण करता है मिथ्या तो अवस्था में उसके कितने मंद परिणाम होंगे, तो उसमें हम कैसे जानेंगे। तो जो कषाय मिथ्यात्व के साथ है वो सम्यक्त्व नहीं होने देता, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी, ये उसकी जाति है। अनंत इन मिथ्यात्व का दूसरा एक नाम है अनंत, मिथ्यात्व का अनंत भी कहते हैं। तो अनंत का अनुबंध करने वाला, उसके साथ मिथ्यात्व बनता रहता है तो उसको कहते हैं अनंतानुबंधी, और हमेशा वो मिथ्यात्व के साथ साथ काम करता है, डबल एजेंट है तो चारित्र मोहनी है, हमेशा मिथ्यात्व के साथ उसको पूरक है, वो उसके साथ साथ वो भी काम करता है। तो ये हुई अनंतानुबंधी की जाति। और प्रत्याख्यान की जाति कैसी है? सम्यक्त्व तो होने देता है परंतु अनुव्रत भी नहीं होने देता, थोड़े भी व्रत नहीं होते होने देता। तो चौथे गुणस्थान वालों को ये अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संयोजन तीनों है, जो मुख्य उसका नाम लेके हम बात करते हैं। अब प्रत्याख्यान कैसा है? तो प्रत्याख्यान आवरण जो है ये पांचवे वाले को है, तो वो महाव्रत नहीं होने देता, ये हुआ प्रत्याख्यान की जाति। और संज्वलन कैसे है? तो मुनि योग्य संयम तो होने देता है परंतु संज्वलन के होते हुए यथाक्रम चारित्र नहीं प्रकट होते, पूर्ण वितरागता नहीं है विवाह, उसको कहते हैं संज्वलन। ज्वलन मंद मंद वहाँ ज्वलन चलता है, बिल्कुल मंद है उनके कषाय, फिर भी वहाँ यथाख्या चारित्र नहीं होता, उसको कहते हैं संज्वलन। ये चार जाति अलग अलग है। तो क्या कहते हैं यहाँ बीच में देखो, कषाय की जाति ही अलग है। हो सकता है कि मिथ्यात्व गुणस्थान वाला कोई जीव अति मंद कषाय समाधानी वृत्ति वाला पाप धीर यानी पाप से डरने वाला व्रतों का पालन करने वाला हो, इससे विपरीत पांचवे गुणस्थान वाला कोई जीव व्यापार आदि उद्यम करता होगा, युद्ध भी करेगा, उसके स्त्री पुत्र आदि परिवार भी होंगे, सांसारिक कार्यों में उलझा हुआ भी दिखेगा। उसको पांचवा गुणस्थान है तो व्रत भी है वहाँ, फिर भी उसके होते हुए भी ये सारी बातें अभी उसके है चल रही है। बाह्य आचरण से उसके गुणस्थान का अनुमान हम नहीं कर सकेंगे। चौथे वाले की भी बात हमने देखी थी कि वो तो अविरत है, उसको तो अनुव्रत भी नहीं है चौथे गुणस्थान वाले। तो जैसे पहले सारे वो बाल बच्चों में दिखता है व्यापार कार्यों में, कोई शादी ब्याह में वो जाता है, तो ये सारे बातों में हम लगता है कि ये बाह्य जैसे है वैसे है, इसको कैसे समय तो है कि नहीं, दूसरे को देखने वाले को कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक उसके बाह्य दिखने वाले जो व्रत जो है वो अन्य को दिखते हैं, वो करता है तो ध्यान में आते हैं, परंतु इससे तो कोई व्रत है ही नहीं है, तो उसके जो अंतरंग अभिप्राय में आमूलाग्र बदल हो गया, मिथ्यात अवस्था में से सम्यक तो हो गया, महान पुरुषार्थ करके और उसके अभिप्रायों में पूरा बदल हो गया, जमीन आसमान का हमने सारा देखा था ना, सम्यक होने के बाद क्या क्या होता है, तो मान्यता में तो बदल हो गया है, अभी बाह्य आचरण तो वैसा ही है। हाँ, उसके अनीति अन्याय अभक्ष और कुगदेव कुगुरु की सेवा वगैरह ये कुछ नहीं होगा, उसके मान्यता में तो फेर खोल गया है। कहते थे कि बाह्य आचरण से गुणस्थान का अनुमान हम नहीं कर सकेंगे, ये निचले वालों के, परंतु मुनि के बारे में अगर देखना है तो कोई कहेगा अरे बाह्य आचरण नहीं तो हम अंतरंग में मुनि है, बाहर चाहे जैसा हम बिहेव करें तो ऐसी बात नहीं करें। परंतु एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि विशिष्ट बाह्य आचरण न होगा तो विवक्षित गुणस्थान भी नहीं होगा, यह तो निश्चित कह सकते हैं। ये पांचवे वाले को जिसको बाह्य में अनुव्रत नहीं है उसको पांचवा गुणस्थान भी नहीं है, ये निश्चित है। परंतु जिसने बाह्यता अनुव्रत जैसे व्रत अंगीकार किए है परंतु अंग तरंग में विकरासता नहीं है तो उसका पांचवा गुणस्थान भी है, यानी दो अलग अलग जीव है, दोनों को समान उसने व्रत लिए, दोनों ने अनुव्रत ग्रहण किया, एक को अंतरंग में विकरासता नहीं है और एक को विकरासता है, तो एक का है गुणस्थान पहला और एक का है पांचवा, बाह्यता दोनों समान दिखते हैं। जिसे बाह्यता अनुव्रत नहीं है वह पांचवे गुणस्थान में नहीं हो सकता, और जिसे आगमोक्त यानी आगम में बताए हुए द्रव्यलिंग नहीं है अर्थात नग्नत्व आदि 28 मूल गुण नहीं है, उसे छठवां सातवां या ऊपर के गुणस्थान नहीं हो सकते। अनुव्रत है, हाँ अनुव्रत, पाया तो भी नहीं कर सकता। अनुव्रत, हाँ अनुव्रत, इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई व्यक्ति वस्त्र सहित अपने को मुनि कहलवाता हो तो वह बात तीन काल में कभी सत्य नहीं हो सकती, यानी ये हमें तो मिल गया ना सिद्धांत, कोई अपने को आचार्य कहलाए कोई भगवान कहलाए गृहस्थ होते हुए भी, तो हमें पता है तो ये गुणस्थानों का स्वरूप हमने जांच गए हैं, तो अपने को पता होगा तो सामने वाला जीव सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है वो कहाँ कितने पानी में अपने को पता चल जाए। वस्त्र सहित छठवा सातवा गुणस्थान नहीं हो सकता तो अरिहंत का तेरहवा चौदहवा गुणस्थान होने की संभावना ही कैसे हो सकती है, तो अरिहंतों को वस्त्र होगे क्या नहीं होगे इसका निर्णय हम कर सकते ना, कि सच्चे देव गुरु का स्वरूप हमने देखा था सच्चे देव का, तो जिस देव को वस्त्र होगे वो देव हो सकेगे, वस्त्र हो अलंकार हो की है नौकर है आयुध है अस्त्र शस्त्र उसके साथ तो कोई भगवान हो ही नहीं सकता। श्री पर्याय वाला जीव पांचवे गुणस्थान तक पुरुषार्थ कर सकता है उसके ऊपर नहीं, इसलिए श्री को मुनि पद अरहंत अवस्था मोक्ष पद उसी पर्याय में प्राप्त होना संभव नहीं है, श्री पर्याय में ही उसको मुक्ति कभी होगी नहीं, भविष्य में पुरुष पर्याय प्राप्त करके वह जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, क्योंकि स्त्री पर्याय के बाद वो सम्यक सुदर्शन होने के बाद स्वर्ग में जाएगा, वहाँ तो पुरुष हो जाएगा देव, वहाँ से आएगा फिर मनुष्य पुरुष होगा, ऐसे दो चार भाव कोई दो तीन भाव में जाएगा या कोई और ज्यादा भाव करके मोक्ष चला जाएगा, उसी स्त्री पर्याय में उसको मुक्ति नहीं होगी। आहार संज्ञा यानी वासना छठवें गुणस्थान तक है, हमने पहले देखा था संज्ञा प्ररूपणा में चार प्रकार के हमने क्या देखी थी संज्ञाएं, याद है किसी के आहार हाँ, परिज्ञा, तो देखो इसमें आहार जो संज्ञा है वो छठवें गुणस्थान तक है, सातवें से उसका अभाव रहता है, यानी सातवें वाले को आहार की भावना आहार की वासना कुछ नहीं रहती, उससे ऐसी इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती। तो तेरहवे गुणस्थान वाले अरहंतों को कवलाहार मानना कितनी बड़ी भूल है यह बात ख्याल में आएगी। तो गुणस्थान से हम सारे प्रूव कर सकते हैं, तू सच है क्या मैं सच हूँ, ये बात ही नहीं है, ये नियम है प्रणालियों को। तो ये नियम लेकर आप देखना जो बात सच है वो एक्सेप्ट करना, जो हमारी मान्यता आज तक गलत है इसको निकाल देना और कुछ नहीं करना इसमें। वस्त्र सहित मुनिपना मानना, स्त्री पर्याय में मोक्ष मानना, केवली के कबलाहार मानना तो महान मिथ्यात्व है। शास्त्र में इसे गृहित मिथ्यात्व कहा है। सर्वप्रथम गृहित मिथ्यात्व छोड़े बिना अगृहित मिथ्यात्व छूट नहीं सकता। तो जो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है परंतु ये मान्यता छोड़ना नहीं चाहता तो उसको कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि नियम है पहले गृहित छूटेगा, देव गुरु शास्त्र संबंधी सच्चा निर्णय होगा और फिर ये सात तत्व संबंधी जो अपनी भूल हो रही है, पर्याय में शरीर में जो आत्मबुद्धि वगैरह जो प्रकार है वो फिर बाद में छूटेगा। होता तो संगी पंचेंद्रिय है मेरे, वो एकेंद्रिय तक के होता है ऐसे धवला में आता है वो कई। हाँ वो तो मुख्यतः तो मनुष्यों के लिए है, परंतु वो बाकी देवों में भी हो, क्योंकि अवधि ज्ञानी है तो पहले के संसार, क्योंकि क्या है वहाँ स्वर्ग में तो वो तो जिन भवन ही है। यहाँ जैसे गणपति है, अन्य अन्य कोई है, हनुमान का मंदिर है, शंकर का है, इतने देव देवता है, वैसा कुछ नहीं है वहाँ, मात्र जिन धर्म ही है। अरहंत ने वो मैंने सुना एक इंद्रिय तक के होता है ऐसे लंगला में आया, और वो कैसे होता है वो तो पता नहीं, पर मुख्य रूप से ऐसा लेना कि तो दूसरे को सुनकर जो अभी नया प्रकट हुआ ऐसा हम लेते हैं ना। हाँ तो मुख्य रूप से हम ऐसा ही था, क्योंकि अन्य लोगों की बातें सुनकर जो हो जाता है मुख्यतः उसकी लेना। अब उसमें केवली गम में जो कुछ बातें होगी तो वो हम अभी यहाँ गौन करें। फूल कथन अलग आता है ना, और उसको सामने देखा था जैसे दूसरे गुणस्थान में मरकर जाने वाला वो जीव दूसरे गुणस्थान में मरकर एक इंद्रिय में जाता है, परंतु वो शरीर पर्याप्ति पूरी होते होते उसके पहले ही वो पहले में आ जाता है, पहले गुणस्थान है। तो वहाँ हमने देखा था तो एक इंद्रिय में पहला ही गुणस्थान होता है, दूसरा होता नहीं ऐसा देखा था। फिर जब हमने डिटेल में पढ़ा था तब वो बात आई थी। तो इसे स्थूल कथन हम उतने तक ही लिमिट रखेंगे, क्योंकि फिर वो कैसे होता है क्या होता है ये प्रश्न भी हमने पूरा तो उसमें से नहीं पढ़ा है, परंतु शास्त्र में ऐसी बात है इतना ख्याल में लेना। ऊपर हमने कसायन की जाति के बारे में बात की थी उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संगवलन क्रोध मान माया लोग चार कसाय चोपड़ी है। ये भेद तीव्र मंदता की अपेक्षा नहीं है परंतु उनकी जाति ही भिन्न भिन्न है। जो कषाय सम्यक तो नहीं होने देते उसमें बाधा डालते हैं वे अनंतानुबंधी कषाय है। ये सारा अभी हमने देखा था ना, तो अभी खाली पढ़ देते इसको। अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व इनकी युति है, वे एक दूसरे को पूरक है। जो कषाय किंचित मात्र भी त्याग यानी अनुव्रत नहीं होने देते उन्हें अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं, वे सम्यक्त्व में बाधा नहीं डालते। चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में सम्यक्त्व तो बना रहता है, ये कर्म के उदय नहीं कहा, कषाय का उदय कहा, यानी जीव स्वयं कषाय कर रहा है वहाँ, परंतु अनुव्रत धारण करने के परिणाम नहीं होते। जो कषाय महाव्रत धारण करने में बाधा रूप है उन्हें प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। पांचवें गुणस्थान में प्रत्याख्यान कषायों का उदय होने के कारण मुनिव्रत धारण करने के भाव नहीं होते। जो यथाख्यात चारित्र जो कषाय यथाख्यात चारित्र नहीं होने देते उन्हें संजोलन कषाय कहते हैं। छठवें गुणस्थान में संजोलन कषायों का तीव्र उदय रहता है, वहाँ 28 मूल गुण पालन करने का भाव यानी शुभोपयोग होता है। देखो मुनि का जो शुभोपयोग है ना, वो तीव्र कषाय, उनके जो संयोजन कषाय है उनके तीव्र कषाय का उदय। तो मंद कब होंगे उनके? ध्यान अवस्था में, सातवें में जाएंगे तब शुद्ध उपयोग। सातवें गुणस्थान में संज्वलन कषायों का मंद उदय होता है, तब जीव शुद्धोपयोग में रहता है। और अन्य बातें नहीं किया क्योंकि अभी हम हा? कर्म का उदय भी होता है, परंतु यहाँ कषायों की तरफ बात चल रही है। नहीं तो हम क्या मानेंगे, हाँ कर्म का उदय है इसलिए उसको मुनि पद नहीं होता, कर्म का उदय इसलिए अनुव्रत नहीं होता, ऐसा नहीं है। जीव स्वयं वैसे परिणाम कर रहा है, प्रत्याख्यान टाइप के कषाय जीव स्वयं करता है। जैसे मिथ्यात्व अवस्था में अनंतानुबंधी टाइप के कषाय जीव स्वयं करता है, तब अनंतानुबंधी का भी उदय चल रहा है वहाँ। परंतु उदय की तरफ से अगर बात करेंगे तो जीव की मान्यता ऐसी होती है, देखो वहाँ उदय है ना इसलिए मुझे ऐसे भाग, यानी मैं तो अच्छा हूँ भोला बनना चाहता है, परंतु वहाँ अनंतानुबंधी का उदय है इसलिए मुझे ऐसा तीव्र राग आ रहा है, यानी कर्म पर डालना चाहता है। कर्म का उदय है परंतु यहाँ जीव अपनी स्वयं की योग्यता से, स्वतंत्रता से अनंतानुबंधी टाइप का कषाय करता है, तब तक उसका मिथ्या को भी साथ में बना रहता है। जीव स्वयं अप्रत्यय नहीं, अभी अनंतानुबंधी गया सम्यक तो उसको हो गया, चौथे गुणस्थान वाला है, तो अभी वो स्वयं ऐसे भाव कर रहा है, स्वयं ऐसे कषाय कर रहा है। उसको अभी है ना वो यानी घर गृहस्थी में कमाने धमाने में विषय कषाय में अभी वो रचा पचा है, वो स्वयं ऐसे कषाय करता है, तब सामने अप्रत्याख्यान का उदय भी है, दोनों ही साथ होता है। उसने हमें नहीं भाव कराए, इतनी परतंत्रता नहीं है, जीव स्वयं करता है, तब वैसे वैसे कषाय वहाँ, ये कर्म भी वहाँ मौजूद है शुद्धोपयोग में। शिव कर्म ने ये अबुद्धिपूर्वक राग भी चल रहे हैं, मंद संज्वलन है, तो ये इतने मंद परिणाम है, और उसका उपयोग कहाँ है ज्ञान का, अपने में सामान्य को जान रहे हैं। हमने देखा ना शुद्ध उपयोग यानी शुद्ध को, यानी सामान्य में वो उसकी अपनी उसने एक ज्ञान लगाया है, तो ये राग जो है उसकी तरफ उसका ज्ञान नहीं है, राग नहीं है ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं सामान्य में उपयोग लगाना उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। हाँ शुभ है ना उसको, वो ज्ञान भी वहाँ लगाए ना शुभ कर, जैसे मुनि पांच समिति क्रिया पूर्वक वगैरह चलते हैं, तो वो उपयोग पूर्वक वहाँ चल रहे कि उपयोग अंदर लगाए और बाहर चल रहे, तो उपयोग वहाँ देख देख के भी चल रहे ना, तो उनका उपयोग वहाँ बाहर लगा, तो वहाँ यानी राग उनके बुद्धि में आ रहा है, और जब ध्यान में है तब राग बुद्धि में आ नहीं रहा, परंतु राग है मंद है। हाँ ये अबुद्धिपूर्वक छठे वाला बुद्धिपूर्वक, यानी छठे तक के, पहले से छठे तक के सारे बुद्धिपूर्वक है, उसके साथ साथ अबुद्धिपूर्वक भी पड़ा है अंदर। जैसे हम बुद्धिपूर्वक का स्वाध्याय कर रहे हैं, अबुद्धिपूर्वक जो यथायोग्य अंदर चल ही रहा है उसके साथ, बुद्धिपूर्वक यानी जो अपने ज्ञान में आए वो हम सो ऐसा नहीं। अच्छा ये पंचाध्याय में हुआ था इसलिए मैं चर्चा नहीं, सोच के करते वो बुद्धिपूर्वक नहीं है, जो अपने ज्ञान में आता है, जो राग अपने पकड़ में आता है, हम जान सकते उसको। अभी अपने में क्रोध आया लोभ आया तो अपने ज्ञान में आता है ना, अपने ज्ञान का विषय है वो, हम जानते हैं उसको। अब जब ध्यान अवस्था में हो तो वहाँ तो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कर रहे, तब वो कषाय मंद हो भी रहे है परंतु अभी वो अपनी पकड़ में नहीं आ रहे, उसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक, वो बुद्धिपूर्वक। हाँ अबुद्धिपूर्वक, हाँ वैसा नहीं। दोनों है, दोनों है, छठवे तक तो बुद्धि अबुद्धि पूर्वक दोनों है, यानी बुद्धिपूर्वक जो अपने ख्याल में आ रहे और जो अपने ख्याल में भी नहीं आ रहे ऐसे भी अंदर चल रहे कुछ, जैसे हम कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड ये सारा चल रहा है, ये सारा बुद्धिपूर्वक में चल रहा है, प्राप्त पर्याय में चल रहा है, प्रकट पर्याय में चल रहा है, तो वहां भी चल रहे हैं, नहीं तो वो वितराग कहना पड़ेगा उसको। बेहोशी में कैसे ऐसा लगता है, बेहोशी में क्या राग द्वेष करता होगा, अरे ये पेड़ पौधे कैसे राग द्वेष करते होंगे, हमने देखा था उसमें तो अशुभ लेशा होती है, तीव्र होता है परिणाम उनको। छठवें में हमने देखा था ना कि तीव्र उदय, और सातवें गुणस्थान में संज्वलन कषायों का मंद उदय होता है, तब जीव शुद्धोपयोग में रहता है। हम जब अनंतानुबंधी का उदय कहते हैं तब अन्य तीन कषाय चौकड़ी भी विद्यमान रहती है, मुख्य है ना इसलिए हमने एक अकेले का नाम लिया, परंतु जब अनंतानुबंधी का उदय कहेंगे तो चारों ही का उदय होता है, जब अप्रत्याख्यान का उदय कहेंगे तो तीनों का उदय रहता है, उसके मुख्य का नाम लेके हम बुलाते हैं। जब अप्रत्याख्यान का उदय कहते हैं तब शेष अन्य दो चौकड़ी कषाय भी विद्यमान रहती है, जब प्रत्याख्यान का उदय कहते हैं तब शेष एक यानी संजलन कषाय चौकड़ी भी रहती है। देश विरत नाम के पांचवें गुणस्थान में हमने जो 11 प्रतिमाएं देखी उनमें पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक उत्तरोत्तर यानी आगे आगे बीच रास्ता बढ़ती जाती है और कषायों की मंदता होती जाती है। यह सारा कार्य अंतरंग में बढ़ती हुई आत्मस्थिरता द्वारा होता है, यानी वो अधिक हमको चौथा है तो पांचवा कैसे प्राप्त हो, तो मुझे अनुव्रत लेने पड़ेगा तो मेरे पांचवा होगा, इसकी मान्यता अगर होगी तो वो अभिप्राय गलत है। तो किस विधि से साधन क्या है ऊपर के गुणस्थान में जाने के, की अंतरंग स्थिरता बढ़ती हुई विचरात्मा, शुद्धोपयोग में रहने का काल बढ़ता जाता है उसी प्रकार बारंबार शुद्धोपयोग होता रहता है। यह जीव ऊपर के गुणस्थानों में कैसे जाता है अर्थात मुनि कैसे बनता है यह हम आगामी पत्र में देखेंगे। ये तो कल का हमारा थोड़ा रह गया था वो हमने पूरा किया, अब ये 12वां प्रकरण देखते हैं मुनि के गुणस्थान। पांचवें गुणस्थान के क्षुल्लक और अलक संबंधी विवेचन हमने किया, यह जीव मुनि कैसे बनता है उसकी हम चर्चा करेंगे। उक्त जीव यानी अभी जो क्षुल्लक अलग बताया 10वीं 11वीं ये 11वीं प्रतिमा वाले हैं ना, क्षुल्लक और अलग दोनों ही 11वीं प्रतिमा वाले हैं, यानी कोई एक वस्त्र रखते है कोई दो वस्त्र रखते है कोई वो, तो उक्त जीव बारंबार शुद्धोपयोग में जाता है उसकी आत्मस्थिरता अधिक समय तक टिकती है, उसे दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करने के भाव आते हैं। जैसे अंतरंग बीच रास्ता बढ़ती जाती है वैसे उसको मुनि होने के भी भाव अंतरंग बढ़ते हैं अधिक, तब वह जीव नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार करता है, वो आचार्य के पास जाता है और उनको विनती करता है नमस्कार करके कि हे आचार्य हे गुरुदेव मुझे दिगंबर जी ने दीक्षा दी थी, जैसे वो व्रत पूर्वक दी जाती है प्रतिज्ञा पूर्वक दी जाती है तो वो दीक्षा अंगीकार करेगा, वो जी वह प्रतिज्ञा पूर्वक 5 महाव्रत धारण करता है, 28 मूलगुण पालन करने की वह प्रतिज्ञा लेता है, ये सारे प्रतिज्ञा पूर्वक होती है। वे 28 मूलगुण इस प्रकार है, 5 महाव्रत देखो याद रखो 5 महाव्रत 5 समिति, ये तो हमने देखा था ना ये सारे 28 मूलगुण हो गए थे सप्ताह सूत्र में भी हुए थे और अभी रत्नगण चौपाचार में भी हुए, तो 5 महाव्रत 5 समिति 5 इंद्रिय विजय 6 आवश्यक और शेष 7 गुण। 6 आवश्यक तो अभी कल परसों देखे थे, आवश्यक परिहानी वो भावना देखी थी ना षोडशकारण भावना में, कौन कौन से आप ठीक है नहीं हाँ आपको याद है, हाँ बोलो, नहीं नहीं वो शेष 7 गुण आप बोलो चित्रा जी, नहीं नहीं श्रावक के नहीं मुनि के, हाँ सामायिक सवन वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और काय से ये मुनि कैसे आवश्यक, हाँ आपने वो 7 शेष गुण में वो भी आएगी क्रम से, आप बोलो 28 की 28 की गिनती की। हाँ वेरी गुड, कल में है सबको। हाँ आवश्यक में सामायिक सवन वंदना आगे आएगी, ये सारे डिटेल में बताइए। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इसमें सारे बताए। हाँ अब ये क्रम से ले लेंगे, पहले महाव्रत क्या है ये सारी बातें, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अशौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत, पांच महाव्रत है। अनुव्रत में हमने परिग्रह परिमाण लिखा था और यहाँ परिग्रह त्याग। शरणानि योग में इन सब व्रतों और मूल गुणों का विस्तृत वर्णन है। समिति का अर्थ है प्रवृत्ति, प्रमाद रहित यत्नाचार सहित प्रवृत्ति मुनि के लिए आवश्यक है। ये तो बाह्य आचरण की अपेक्षा स्थूल कथन है, वैसे समिति में भी उनकी जो अंतरंग बढ़ती हुई विकराक है वही निश्चय से समिति है। मुनि जीवन में मुनि की प्रवृत्ति यानी आहार विहार आदि क्रियाएं इस प्रकार होती है कि जिसमें अहिंसा महाव्रत पले, यानी ये जो देख कर सोच कर सारा उठाना रखना चलना भोजन में भी कम से कम यानी बिल्कुल हिंसा न हो, इस तरह से ये सारे अहिंसा महाव्रत पलने के लिए ये सारे उनके आचरण संबंधी नियम है। क्रिया समिति भाषा पहले नाम लिए फिर एक एक का अर्थ भी बताया। क्रिया समिति भाषा समिति एषणा समिति आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, इस तरह पांच समिति है। कौन कौन सी? क्रिया भाषा एषणा आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। अब इस क्रम से देखेंगे एक एक का अर्थ क्या होता है। प्रासुक जीव रहित स्थान पर चार हाथ जमीन देखकर चलना क्रिया समिति है, यानी मुनि रात में नहीं चलेंगे, दिन उगने के बाद चलेंगे। अभी वो तो वन में या गांव के बाहर ऐसे रहते हैं, वहाँ लोगों का भी आना जाना थोड़ा बहुत रहता है, तो लोगों के आने जाने से वो मार्ग प्रासुक कहलाता है, फिर उस पर मार्ग पर चलेंगे। ऐसे उसमें बहुत सारे नियम है। क्रिया चलते हुए कभी बोलेंगे नहीं, हम तो आपस में बात करते करते इधर उधर देखते हुए, ये ऊपर क्या है, वो कैसी पार्टी है, कहाँ कैसी साड़ी लगी है, तो ये तो उनकी नजर तो नीचे होते हैं, हो सकता है थोड़ा आगे देख ले, फिर चार हाथ जमीन की तरफ देख देख कर चलते हैं कि कोई जीव वहाँ आकर नहीं मरे, और मौन से चलेंगे, बातें करते हुए नहीं चलेंगे। कोई अन्य मुनि भी चलते होंगे साथ में, श्रावक भी चलते होंगे, तो भी मौन से चलेंगे। ये क्रिया समिति हितमितत प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है। दूसरों की निंदा करने अपशब्द बोलने मन दुखाने वाली बात कहने का उन्हें भाव ही नहीं आता। जो जीव हर अंतर्मूर्त शुद्धोपयोग में जाता हो उसकी वाणी में भी शुद्धात्मा की ही कथा वार्ता होती है, दुनिया भर की बातें करने में उन्हें कोई रस नहीं लगता। तो ये जो कोई बराबर है नहीं है, हमें जांच कर सकते हैं ना अपने मन में, किसी को बताना नहीं, तो उसकी वाणी के द्वारा भी हम निर्णय कर सकते हैं कि यहाँ मुनिपना है कि नहीं है। तो वाणी कैसी होगी? एक तो हितमित प्रिय होगी, और जो बोलेंगे वो कैसे बोलेंगे, तो मोक्ष मार्ग संबंधी बात करेंगे। जो अमेरिका में जाके आता है वो कहाँ की बातें करता है? हाँ वो हाँ ऐसा होता है, वैसा था, वैसा था, ये रस्ते ऐसे थे, घर ऐसे, ये ऐसे चकाचकियाँ बहुत दूर है, ऐसे करेगा? तो ये शुद्धोपयोग में बारंबार जाते हैं तो उसी की चर्चा करेंगे, और सामने वाले जीव को उसी का प्रोत्साहन देंगे, चल तू भी कर ले, ये मनुष्य वो ऐसा दुर्लभ है, तुझे मिल गया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, चलो कर लो, ऐसे कहेंगे ना। शास्त्र में भी आता है ना, हम यहाँ खड़े हैं, मुनि स्वयं को कहते, उनको कोई अपने का ऐसा अभिमान नहीं है, देखो मुझे बहुत वितरकता है, तुम्हें नहीं ऐसा नहीं बताना कि उन्हें ऐसा कहना है कि देख ये हो सकता है, मेरा उदाहरण देख, देखो मैंने किया है ना, तुम भी कर सकते हो। कैसे में आती है बात ऐसी? एषणा समिति आहार संबंधी है। मुनि जो आहार ग्रहण करते हैं वह ध्यान और स्वाध्याय की स्थिरता के हेतु शरीर की स्थिरता के लिए करते हैं, यानी शरीर की स्थिरता से ध्यान और स्वाध्याय की स्थिरता, यानी जहाँ जैसे उनको स्थिरता होती हुई दिखती है वैसे वैसे करेंगे। उपवास से अधिक स्थिरता होती तो वो उपवास करेंगे, समझे। ऐसे विकल्प आते हैं या स्थिरता नहीं होती दिखे तो आहार के लिए भी जाएंगे। जीवा इंद्रिय की लोलुपता के लिए नहीं करते। जब श्रावक शास्त्रोक्त विधि से नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान देते हैं, तब मुनि 40 दोष और 32 अंतराय टाल कर निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं। अभी उसकी ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं की है। हमने देश विरुद्ध गुणस्थान में उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा देखी थी। उस प्रतिमा के धारी श्रावक भी उनके उद्देश्य से बनाया हुआ आहार ग्रहण नहीं करते और उनके उद्देश्य से बनवाई गई वसति का में नहीं रहते, क्योंकि उसमें हिंसा की अनुमोदना का दोष लगता है। यह तो मुनि की बात है, उन्हें भी उद्दिष्ट आहार का त्याग होता है। एक साल में है ना, पर तो पूछा था ना हमने, उद्दिष्ट त्याग है क्या, उनके लिए बनवाया हुआ भोजन और वसति का इसका त्याग है। हाँ, उद्देश्य उसको कहते उद्दिष्ट। आदान निक्षेपण समिति में मुनि भले प्रकार अपनी आंखों से देख व शोध कर पिछी से प्रमार्जन करके किसी वस्तु शास्त्र कमंडलू पुस्तक आदि को उठाते या धरते हैं, स्थान का भले प्रकार शोधन व प्रमार्जन करते हैं। यानी पुस्तक भी उठानी है तो ये पहले पिछी से उसका प्रमार्जन करेंगे, फिर उठाएंगे। अभी पन्ना पलटाना है तो फिर ऐसे वो करते हैं, क्योंकि कोई जीव नहीं हाथ के नीचे है। तो कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, हमने यहाँ देखे ना अभी बम्बे में, तो हम पता है कागजों में तो दीवारों पे कितने छोटे 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 जैसे पिन पॉइंट जितने दिखते कीड़े घूमते हुए, तो उनके हाथ से कोई हिंसा ना हो तो बैठने के पहले वो आसन भी ऐसे पिंची से प्रमार्जन करके शोध कर फिर बैठेंगे। प्रतिष्ठापन समिति का अर्थ है हरिशकाय रहित और त्रसकाय रहित स्थान पर शरीर के मलमूत्र का क्षेपण करना। पर अभी इंद्रिय विजय की बात है। स्पर्शनेन्द्रिय विजय, रसनेन्द्रिय विजय, घ्राणेन्द्रिय विजय, चक्षुरेन्द्रिय विजय और श्रोत्रेन्द्रिय विजय पांच प्रकार के इंद्रिय विजय हैं। मुनि पांचों ही इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, उनका निरोध करते हैं। इंद्रियों के विषयों में उनके आसक्ति नहीं होती, उनमें उन्हें राग भी नहीं होता और द्वेष भी नहीं होता। जो इंद्रियों को वश में रखना चाहते वो कैसे, या तो जबरदस्ती या फिर द्वेष बुद्धि से कोई चीज उसने त्याग की हो, हम ये नहीं खाते। यानी वहाँ दया के भाव है कि द्वेष के भाव है, जरा अपना अपना जानना। आलू प्याज नहीं खाते और कोई सामने वाला खाता है तो कैसे घृणा जैसे उसको हो जाती है, उसको द्वेष बुद्धि हो जाती है। वो तो हम वहाँ के जितने जीव है उनकी दया पालने के परिणाम से कर रहे हैं। और जो किसी कोई व्यक्ति एक कोई चीज का त्याग कर देता है और दूसरों के प्रति देख देख कर और कथाएं बढ़ाता है ना, ऐसा होता है ना कि जिसने कुछ त्याग कर दिया है तो और जिससे नहीं बनता त्याग तो उसके तरफ देख देख कर तो अपने ही कथाएं बढ़ाता है। देखो हमने इतना किया, इसको इतना भी नहीं मालूम ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम नहीं खाते, इसने हमारे लिए कुछ बनाए नहीं, ये ऐसे से हो जाते भाव। मुनि के शत आवश्यक मुनि जीवन में प्रमाद नहीं होने देते। मुनि को अपने कर्तव्य प्रति दक्ष रखते हैं। आवश्यक कर्तव्य को आवश्यक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है, अभी हमने देखे थे ना, सामायिक चतुर्विंशति स्तव, स्तवन में वो 2400 तीर्थंकरों की स्तवन होती है। वंदना में एक एक किसी पर्टिकुलर की वंदना भक्ति होती है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, अभी इसका स्वरूप तो अभी हमने देखा ही है रत्नगण चौकाधार। बाकी रहे 7 मूल गुणों को शेष 7 गुण कहते हैं। वे इस प्रकार है, शेष लोच, वस्त्र त्याग यानी नग्नत्व, अस्नान अर्थात स्नान त्याग, भूमि शयन, अदंत धोवन यानी मुखमार्जन करते वो नहीं करना, स्थिति भोजन खड़े खड़े करपात्र भोजन, करपात्र ने करे ने हाथ, कर को पानी भी कहते, पानी पात्र भी कहते हैं। हाँ, पानी ने हाथ ये संस्कृत शब्द है, पानी ही रस्व और पानी का दीर्घ यानी दूसरी ही करेंगे तो पानी यानी जल। पानी ग्रहण आपने बोला ना, शादी को क्या कहते, पानी ग्रहण किया यानी हाथ का ग्रहण, एक दूसरे में हाथ देते ना, क्या कहते हैं हस्त मेलाप, शू कहो, हाँ वो पानी ग्रहण हुआ। सारंग पानी भी नाम है, ऐसे ना हो जाते सारंग पानी ऐसे के नाम आते हैं, तो पानी है ना हाथ। तो स्थिति भोजन यानी खड़े खड़े करपात्र भोजन, वो ऐसे थाली में नहीं खाना खाएंगे, हाथ में, आपने कभी देखा नहीं होगा ये हाथ ऐसे यानी जो है ना लिटिल फिंगर, वो एक दूसरे में ऐसा करके इस तरह से वो अंजलि करते हैं और फिर इसी में पानी भी पिएंगे, इसी में वो भोजन भी करेंगे, ऐसा वो शोध शोध कर, यानी उसमें कोई कंकर नहीं है ना, कोई बाल बाल नहीं दिखता है ना, ऐसे तो छोड़ देते रहे सब, भोजन बंद करके चले जाते हैं। तो वैसे करपात्र भोजन, और वो भी खड़े खड़े बैठ कर नहीं भोजन करेंगे, एक बार करते किसी भोजन में खड़े खड़े करपात्र भोजन। और एक भक्त लिखा है ना, भक्त ने वो भक्ति करने वाला भक्त ने भोजन को भी भक्त कहते हैं, किसी भोजन है खड़े खड़े एक पोजीशन में वो, यानी स्थिति भोजन में भी ये सारा आता है कि खड़े खड़े कष्टदायक जीवन नहीं है, समय दृष्टि जीव निरंतर आत्मिक आनंद का उपभोग लेता है, इन मुनियों को इंद्रिय विषयों में कोई रस ही नहीं लगता, देह और राग से भिन्न अपने ज्ञानानंद में अस्तित्व का भान उन्हें सदैव वर्तता है, इसलिए मुनियों के क्रियाओं में उन्हें कष्ट या जबरन मेहनत नहीं लगती। ये जिसको भी पता नहीं ना क्या विश्रापता है क्या आत्मिक आनंद है, उनको तो मुनि जीवन के प्रति देख देख कर लगता है, अरे बिचारे कैसे कष्ट होगा, कैसे रहते होंगे, क्या क्या होता होगा, ऐसी इमेजिनेशन करता है। तो मुनि को तो मुनि आपकी तरफ देख लगता है, ये कहाँ विषयों में पड़ा है, कितना दुखी है बेचारा, संसार में रूल रहा है, क्योंकि उन्होंने वो पूर्व अनुभूत किया है कि पहले हम संसार में थे और अभी हम कैसे आत्मिक आनंद में हैं। तो उनकी तो बराबर है, सही है मान्यता, और ये जो मिथ्या दृष्टि है वो मुनि के बारे में जो सोच रहा है वो उसकी वो गलत मान्यता है, क्योंकि वो जो मुनि जानते कि ये सचमुच सुखी है। इस प्रकार 28 मूल गुणों का निरपेक्षता पालन करने वाला जीव जब स्वसन्मुखता करता है, शुद्धोपयोग में रहता है, उसकी आत्मस्थिरता बढ़कर तीन कषाय चौपड़े का अभाव होता है, तब उसे सातवां अप्रमत्त गुणस्थान प्राप्त होता है। देखो अभी एक पांचवे वाला हमने जीव लिया, पहले मुनि इसका अंगीकार किए 28 मूल गुण निरपेक्षार पालन, उसमें चाहे जैसा दोष है ऐसा नहीं चलेगा, तो ऐसे पालन करते करते वो बारम्बार आप सामयिक वगैरह तो पांचवे गुणस्थान में भी कर रहा था तीन टाइम, अभी और उसमें उसकी रुचि यानी स्थिरता बढ़ती जाती है, शुद्धोपयोग बढ़ेगा और तीन कषाय का अभाव हो जाएगा, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान पहले गए थे, अभी प्रत्याख्यान भी चला जाएगा, तब क्या होगा, शुद्धोपयोग में पांचवे से वो सातवें में जाएगा, दीपाली छठे में नहीं जाएगा, पहले जब मुनि होगा वो पांचवा रहा था, हाँ बाह्यता तो पांचवे में ही मुनि होगा, द्रव्यलिंगी पहले होगा, बिना द्रव्यलिंगी के उसको भावलिंग प्रकट नहीं होगा, तीन कषाय का अभाव होगा ही नहीं। कोई जो हम देखते हैं जो पहले गुणस्थान में रहते हुए मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं और बाद में इस तरह से वो बराबर सही निर्णय करके अंतरंग में इतना पुरुषार्थ कर लेते हैं कि पहले से सातवें तक जाते, शुद्ध उपयोग में तीन कषाय टुकड़ी का एक साथ अभाव कर देते, हो सकता है कोई चौथे से सातवें में जाए या कोई पांचवे से सातवें में जाए, कोई पहले से सातवें में जाए, परंतु छठे में जाएगा ना पहले। शुद्धोपयोग में सातवां शुद्धोपयोग का गुण स्थान है और छठवां शुभोपयोग का, सातवें ध्यान अवस्था है, अंतरंग में भीमता अवस्था है, और छठवे में आते तब ये बाह्य शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, आहार के लिए जाना या अन्य जो उनके जो स्वावश्यक क्रिया है उसमें कहीं ना कहीं वो रहेंगे, शुभोपयोग में रहेंगे, वो छठवा गुण स्थान है। इसलिए पहले में पहले सातवें का नाम दिया गया, तो सातवा गुण स्थान प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है? अप्रमत्त विरत। पहले पांचवे का नाम क्या लिया था हमने? देश विरत। और छठवे का नाम अभी देखेंगे, प्रमत्त विरत। सातवें गुण स्थान यानी शुद्धोपयोग का काल अल्प है, एक अंतर्मूर्त है, उसके बाद जीव नियम से छठवें गुण स्थान में आता है। यह शुभोपयोग का काल है, इसमें अध्ययन अध्यापन यानी सिखाना, अध्ययन यानी स्वयं सीखना, अध्यापन यानी दूसरों को सिखाना। आहार विहार आदि क्रियाएं होती है, वो तो विहार करते रहते ना, चौमास आए ना, चातुर्मास में खाली वो कहीं एक जगह में उनका वहाँ होगा रहने का, परंतु जब चौमासा नहीं है तो अन्यत्र वो हमेशा विहार करते रहेंगे, एक गांव में तीन दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे, इससे भी कोई उनकी लिमिटेशन होती है, तो ऐसे वो गमन करते रहेंगे, विहार करते रहेंगे। हम देखते ना एक जगह में ज्यादा रहेंगे तो हमारा राग कितना बढ़ता है, तो मुनि को तो फिर लौकिक प्रयोजन ही नहीं, कहीं किसी से लगाव ही नहीं है, तो रहने का एक ही जगह में रहने का कोई उन्हें राग रहता ही नहीं रहता, और वैसे राग रहे तो वो मुनि पना नष्ट हो जाता है। पुनश्च अंतर्मूर्त में सातवां गुणस्थान प्राप्त होता है, इस तरह निरंतर छठवां सातवां गुणस्थान प्राप्त होता रहता है। आचार्य उपाध्याय और साधु सदैव छठवें सातवें गुणस्थानों में जीते रहते हैं। हमने वो आचार्य का स्वरूप देखा था, उपाध्याय का अलग अलग देखा था, और साधु का, तो उनके 28 मूल गुण तो सबके कॉमन है और उनका गुणस्थान भी छठवां सातवां है। मुनि हो या व्रती श्रावक हो, उनके अंतरंग की वितरांगता या गुणस्थान तो बाह्यता दिखते नहीं है, इसके अलावा परिणामों में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। सांप सीढ़ी के खेल समान ऊपर के गुणस्थानों से नीचे के गुणस्थानों में और फिर पुरुषार्थ करके ऊपर के गुणस्थानों में गमनागमन चलता रहता है। इसलिए मुनि का गुणस्थान या सम्यक्त्व की परीक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है। देखो, क्योंकि बाहर से 5 मिनट में वो पहले में गए और फिर ऊपर चढ़ते आए, पता नहीं चलेगा। तो मुनिव्रत तो हम किसका निर्णय करेंगे? मुनिव्रत बाह्यता जो दिख रहा है वो मुनिव्रत ने 28 मूल गुण यथार्थ पल रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा श्रावक कर सकता है। अकेला कर सकता है इतना ही नहीं, तो इतना ही नहीं, परीक्षा करके 28 मूल गुणों का यथार्थ पालन करने वाले मुनि को आहार दान देना, उनकी भक्ति पूजा करना श्रावक का कर्तव्य है। सम्यक दृष्टि जीव भी चौथे गुणस्थान वाला, वो भी द्रव्यलिंगी कोई मुनि दिखे, सबसे द्रव्यलिंग की बात है, अकेले कोई भी मुनि दिखे ऐसी नहीं, उनका द्रव्यलिंग बराबर जैसे शास्त्र में बताया वैसे होगा, तो उनको नमस्कार करना, भक्ति करना, उनको आहार दान देना, ये उसका भी कर्तव्य है। क्योंकि मुनि को तो ये तो व्यवहार है ना, आहार दान देना भक्ति पूजा है, तो बाह्य व्यवहार है, तो उनके लिए वो द्रव्यलिंग ही देखा जाता है। उनके परिणाम कहाँ है, वो चौथे में आ गए क्या अभी गिर कर, क्या पांचवे में आ गए, क्या पहले में चले गए, क्या फिर ऊपर आ गए, ये नहीं देखा है, ये उसका काम नहीं है। परंतु जब ये कभी ये कब बातें चलेगी द्रव्यलिंग को नमस्कार, जब आहार दान देने का प्रसंग है या बाह्य में समाज में उनको भक्ति पूजा वंदना करना है, तब परंतु जब देवगुरु शास्त्र के स्वरूप का निर्णय करने की बात आती है, जब उससे पूछा जाए कि मुनि कैसे होते हैं, तो अकेले द्रव्यलिंग को नहीं मानेगा, तो देव कैसा है, गुरु कैसे है, शास्त्र कैसे, जब बात आएगी तब वो मुनि का स्वरूप कैसे मानेगा, कि तब द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग प्रकट करने वाले छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले जीव ही मुनि है, भावलिंगी संत है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय हमें करना चाहिए, यानी मुनि कैसे होते हैं, अगर कोई अपने आप से पूछे या दूसरों को बताना चाहे, तो द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंगी छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि ही सच्चे मुनि है, ये उसको निर्णय होना चाहिए। परंतु जब कोई सच्चा द्रव्यलिंगी दिखे तो उनको सामने जाकर नमस्कार करेगा, आहार दान वगैरह जो जो कुछ श्रावक की योग्य क्रिया है वो बराबर वो पालन करेगा, यही सा नियम। छठवां सातवां और ऊपर के सभी गुणस्थान एकमात्र मनुष्य गति के जीव को ही, पुरुष को ही प्राप्त हो सकते हैं। पांचवा गुणस्थान किसको प्राप्त हो सकता है, कितने गति के जीवों को, मनुष्य और तिर्यंत, और वो भी कौन से, कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंत। देवगति और नरगति में कौन सा गुणस्थान हो सकता है, और पहले से कितने हो सकते हैं, पहला हो सकता है कि नहीं हो सकता, होगा, दूसरा होगा कि नहीं होगा, तीसरा हो सकता है, चौथा, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये गुणस्थान चारों गति में हो सकते हैं। अब तिर्यंत में कितने हो सकते हैं, पांच, और मनुष्य में कितने हो सकते हैं, 14। जब सिद्ध होगा तो मनुष्य नहीं रहेगा। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाला कोई जीव जब अंतरंग में अधिक चिंता करता है तब उसके परिणाम अधिक निर्मल होते हैं, और बढ़ती हुई वितरागता के साथ उसे ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होते हैं। आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, ये एक सीढ़ी बताई, श्रेणी कहते इसको, या आठवां, नौवां, दसवां और बारहवां गुणस्थान क्रम से प्राप्त होते हैं। दो ख्याल में है ना, दो रूप से, एक तो आठ, नौ, दस और ग्यारह, उसको कहते हैं उपशम से, या आठ, नौ, दस और बारह, उसको कहते हैं क्षपक से। तो ग्यारहवे में जाने वाला कर्मों का उपशम करते हुए जाता है और फिर वापस आता है, वही पर नहीं रुकता ग्यारहवे में, निकल ख्याल में आता है। और जो क्षपक से नहीं मानता है वो कर्मों का क्षय करते करते हुए बढ़ता है आगे, तो आठवे फिर नौवा फिर दसवा फिर बारहवा, फिर लौट कर नहीं आएगा बारहवें से नीचे, फिर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसने एक एक कर्म का वो क्षय करते करते क्रम से ऊपर चढ़ा है, फिर बारहवें वाला नियम से अरिहंत हो जाएगा। ग्यारहवें वाला ग्यारहवें में से डायरेक्ट अरिहंत नहीं हो सकता, ग्यारहवें में से डायरेक्ट बारहवें में नहीं जा सकता, दोबारा नीचे छठवें सातवें तक आएगा वो, और फिर जो चाहे वो उसका पुरुषार्थ होगा, तभी वो होगा, तो शपथ नहीं करेगा। तो ये दसवां बारहवां गुणस्थान क्रम से प्राप्त होते हैं, इन चार गुणस्थानों को श्रेणी के गुणस्थान कहते हैं। श्रेणी ने सीढ़ी है ना, हम चढ़ते हैं, वैसे यहाँ वितरागता में निर्मलता में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए इसको श्रेणी कहा है। या कहते हैं कि मुनि ने श्रेणी मांडी या श्रेणी पर आरूढ़ हुए हैं, ऐसे एक कथन पद्धति है। इसमें दो प्रकार से श्रेणी मांडी जाती है, यानी श्रेणी का आरोहण होता है, आरोहण यानी चढ़ना, एक उपशम श्रेणी और दूसरी क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशम होता है। देखो 21 क्यों लिखा, हमने टोटल कितने हैं मोहनीय की कर्म, मोहनीय दो प्रकार के, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय 3 प्रकार के और चारित्र मोहनीय 25 प्रकार के, इतना हमने देखा है ना। तो इसमें 21 कहने कौन कौन गए नहीं है वहाँ, हाँ नहीं, अनंत दर्श चारित्र मोहन की कितनी है, 25 है बराबर, तो उसमें से चार बात करो तो कितनी रह गई, 21 प्रकृति। अब ये 21 प्रकृति सहित श्रेणी चढ़ेगा तो ये उपशम श्रेणी में क्या होता है, चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों का उपशम होता है, यानी उसको उपशम करना, यानी भविष्य में तो पड़े रहेंगे परंतु उदय में नहीं आएंगे। हमने देखा था ना पहले अंतरकरण में, हाँ सप्ताह में रहेंगे परंतु उसका उदय नहीं होगा, उसको कहते हैं उपशम। तो 21 प्रकृतियों का उपशम होता है और अनंत अनुबंधी चार में। वैसे उदय तो वहाँ संज्वलन का ही था परंतु अंदर है ना, सत्ता में पड़े रहते हैं। फिर तीन कसा चौकड़ी का तो अभाव हुआ ही था बराबर, उदय तो संज्वलन का था परंतु संज्वलन का उदय है। जैसे अभी मुनियों को छठे सातवें से पहले बात करें, छठे सातवें में मुनि है, फिर भी हो सकता है कि कभी उनको ये जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान या इवन अनंतानुबंधी का भी उदय आए और वो नीचे के गुणस्थान में आ सके, ऐसे हो सकता है ना। तो उपशम किया ने क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कर गया श्रेणी करने के पहले वो अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर देता है, यानी क्या करता है पूरे जो अनंतानुबंधी पड़े सत्ता में उसको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संगलन रूप बना देता है, इसलिए अनंतानुबंधी को यहाँ नहीं गिनाया। इसलिए अनंतानुबंधी को छोड़ा, क्योंकि अनंतानुबंधी को पहले वो 21 रूप बना देता है, ये जो रिमेनिंग रूप बना देता है और फिर 21 के साथ श्रेणी करता है। तो उसमें उदय तो अकेला संज्वलन का है, मंद उदय होगी क्योंकि श्रेणी है ना, मंदतर मंदतम होता जाएगा, बिल्कुल कमती कमती होता जाएगा, परंतु ये जो अंदर सत्ता में जो पड़े रहे वो उदय में नहीं आ सके, ऐसे उनको खोप देता है, उसको कहते उपशम। तो ऐसे सारे को थोप देगा और 11वें गुणस्थान में जाएगा तो वहाँ भी किसी भी एक का भी उदय नहीं, 10वें में तो सूक्ष्म लोग का भी उदय था, 11वें में तो किसी कसाय का उदय नहीं है, तो वहाँ जीव कैसा है, पूर्ण वितराग है, पूर्ण वितराग अरिहंत जैसी वितराग का, परंतु वो जो थोपना उसने रोक दिया है, वो थोपने को लिमिट है, अंतर्मुहूर्त तक ही थोप सकता है, ज्यादा नहीं है। तो ये अंतर्मूर्त होने के बाद वो थोपे हुए फिर क्रम क्रम से वो फिर उदय चालू हो जाता है, फिर 11वें से 10वें में, फिर 9वें में, फिर 8वें में, फिर 7वें में और फिर 6वें तक आ जाता है क्रम से, ज्यादा ऐसे डायरेक्ट छलांग नहीं मारेगा, 11वें से एकदम डायरेक्ट किस 6वें में जाए या डायरेक्ट दूसरे में जाए ऐसी नहीं बात है, क्रम क्रम से 6वें तक आता है, फिर 6वां 7वां चालू रहेगा या मुनि के परिणाम और कहीं कुछ और संकलित नाम हो जाएगा, कोई 5वें में, कोई 4थे तक भी आ सकता है, कोई वहाँ से भी नीचे गिर सकता है, ये अनेक रास्ते वहाँ से जाए। तो हम तो श्रेणी देखते हैं, इसको उपशम श्रेणी कहते हैं। तो ये 21 प्रकृतियों का वहाँ उपशम था और क्षपक श्रेणी में उन 21 प्रकृतियों का क्षय होता है। अभी इसमें तो क्षपक श्रेणी कौन चढ़ेगा, जिसने अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनी की 3 का क्षय किया, क्षय ने सत्ता में से वो पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया पहले ही, जिसको हम कहते क्षायिक समय दृष्टि हुआ। तो क्षायिक हुए ने क्या किया, दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी 4, इन 7 का क्षय कर दिया। तो चारित्र मोहनी में से 4 तो हो गए, ये रहे कितने, 21 रहे। तो 21 का भी वो क्रम क्रम से क्षय करते करते ऊपर चढ़ेगा, اس کو کہتے ہیں شپک شرینی. ہاں شہ کر کے چلے گا. ہو سکتا ہے کہ شاید سمے دشتی بھی اکشم شرینی چڑھتا ہے, چڑھ سکتا ہے, پن چڑھ کر پھر اوپر نیچے آئے گا اور پھر شپک مانڈے گا. اپشم ادھک سے ادھک ایک بھو میں دو بار, اور ہو سکتا ہے پورو کبھی بھو میں مانڈی ہو تو ادھک سے ادھک چار بار, اس سے زیادہ نہیں. وہ تو نیم سے شپک شرینی مان کر موکش چلا جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا. ایک بھو میں دو بار مان سکتا ہے. چار سے زیادہ ہے. ہاں دیکھو تو شپک شرینی میں کیا ہوتا ہے کہ بارہواں کشن موہ گنستان پراپت ہو جاتا ہے. دیکھو ابھی ہم تھوڑا سا پھر پہلے پانچ گنستان تو ہم نے دیکھے تھے نام ان کے. چھٹے ساتویں کا نام کیا ہے؟ ہاں پرمت ویرت اور پرمت ویرت, یہ چھٹا ساتوا. ابھی یہاں اکشم کے یہ شرینی کے گنستان ہم دیکھتے ہیں. تو شرینی میں ہم نے گیارہویں کا نام کیا دیکھا ابھی ابھی؟ گیارہویں کا نام دیکھو یہاں لکھے نا, اکشانت موہ ملا دیپالی. ابھی جو ہم نے پہلے بار پڑھا اس میں تیسری لائن گیارہواں اپشانت موہ, اور بارہویں کا نام کیا لکھا ہے؟ شین موہ. اسی پیراگراف میں آپ نہیں ملا. دیکھو پھر سے دیکھو ہم نے دیکھا تھا نا دو پرکار سے شرینی مان لی جاتی ہے. وہ ملا دو پرکار سے شرینی مان لی جاتی ہے. اس میں تیسری لائن میں گیارہواں اپشانت موہ ملا, اور بارہویں کا نام نیچے لکھا ہے شین موہ. تو گیارہویں بارہویں کا نام کیا ہے؟ اپشانت موہ اور کشین موہ. یہاں تک تو پتا چل گیا ہم کو ناموں کا. اس طرح چھٹویں گنستان سے بارہویں گنستان تک سبھی گنستان منی راجوں کے ہی گنستان ہیں. دیکھو چھٹے سے شروع ہو کر ویسے دیکھا جائے تو ارنت بھگوان کو بھی مہا منی کہتے ہیں. یعنی ایک اپیشا سے چھٹویں سے لے کر چودھویں تک بھی ہم منی کے گنستان کہیں گے. اپشم شرینی والا جی گیارہویں گنستان میں ایک انتر مورت رہتا ہے, اور اپشم کال پورن ہونے پر دسویں میں, وہاں سے نوے میں, وہاں سے آٹھویں میں, اور وہاں سے ساتویں, اور بعد میں چھٹویں میں کرم سے آتا ہے. اس کے پشچات چھٹواں ساتواں گنستان چلتا رہتا ہے. یعنی کامنلی چھٹواں ساتواں چلے گا, اور کسی جیو کے کئی پرینام الگ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے نیچے بھی آ جائے. شپک شرینی والا جیو دسویں گنستان کے انتم سمے میں چاریتر موہنی کرم کا کھے کر کے بارہویں گنستان میں جاتا ہے. درشن موہنی کرم کا کھے تو پہلے ہی ہو چکا ہے, اس لیے بارہویں گنستان میں موہنی کرم کی ستا ہی نہیں رہتی. وہ پورن نشٹ ہو چکا نا, پرنتو انیہ تین گھاتی کرموں کی ستا اور ادے رہتا ہے. دیکھو ہم لوگ کہتے ہیں چار گھاتی کرموں کا ناش کر سے کیول گیان پراپت ہوتا ہے, ارہنت پنا پراپت ہوتا ہے. تو یہ کہاں پر ان کو پورن وتراستا پراپت ہوئی ہے؟ بارہویں میں. دسویں کے انت ہے, بارہویں کا پہلا سمے کا ہو, اس سمے موہنی کا پورن ناش ہو گیا, پورن کھے ہو گیا, شاید چاریتر پراپت ہو گیا ان کو. پرنتو ابھی وہاں گیانورن ہے, درشناورن ہے, اور انترائے ہے. یعنی ان کی ستا بھی اور ادے بھی چل رہا ہے. بند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. بند اس کا گیانورن درشناورن کا دسویں تک تھا, ہم نے دیکھا تھا. بارہویں گنستان کے انت میں ان تین گھاتی کرموں کا پورن کھے کر کے جیو تیرہویں گنستان میں جاتا ہے. یعنی جب کھے ہوتا ہے تب اس کو ہی تیرہواں گنستان کہتے ہیں. بارہویں گنستان میں پورن وتراگی بنا ہوا جیو تیرہویں گنستان میں साक्षात ज्ञान प्राप्त होने से सर्वज्ञ बन जाता है। सर्वज्ञ बनने से पहले क्या बना वो जीव? वितराग, पूर्ण वितराग। इसे संयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। क्या नाम अभी, क्या कौन सा नाम आया 13वें का? हाँ, 11वें का नाम क्या देखा था? उपशांत मोह। और 12वें का सीन मोह। 13वें का संयोग केवली। संयोग यानी अभी वहाँ योग है। इस जीव को अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य की, इसको क्या कहते हैं? अर्थात अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य यह है कि सातवें गुणस्थान वाला जीव स्वरूप में लीन था, उसके अनंतर श्रेणी पर आरूढ़ होने पर उस जीव ने विशेष स्वरूप स्थिरता बढ़ाई और वितरागता में वृद्धि हुई। उसी स्वरूप स्थिरता द्वारा वितरागता और उसी द्वारा सर्वज्ञता ने केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वितरागता और सर्वज्ञता स्वभाव में थी, वह प्रकट हुई, कहीं बाहर से नहीं आई। ये मुनियों को भी वितरागता होती है, वो उनके 28 मूल गुणों में से आती है कि अंदर में इसके प्रभाव में से प्रकट होती है? प्रभाव में से, मिथ्यात्व से सम्यक तो हुआ, वो बाहर से आएगा ना, कहाँ से प्रकट होगा? स्वभाव में से। जिस जिस गुण की जो जो पर्याय है, वो उस गुण में से, उस स्वभाव में से प्रकट होती है। बाहर से निमित्तों से नहीं आती। देव शास्त्र गुरु हमें सम्यक को प्राप्त नहीं करा देंगे। अब वो निमित्त रूप से वहाँ होते हैं, उपस्थिति होती है, परंतु वो पर्याय कहाँ से हुई? उस गुण में से हुआ। उसके पश्चात अनंत काल तक ये स्वभाव पर्याय होती ही रहती है। अब एक बार वितराग सर्वज्ञ हुए तो भी दोबारा वो नीचे के गुणस्थानों में नहीं आएंगे। स्वभाव की महिमा तो अगाध है, उसका वर्णन कहाँ तक करें? वस्तु और वस्तु का स्वभाव अनादि अनंत है। वस्तु तो अनादि अनंत है, हमें मालूम है, तो उसका स्वभाव भी रहेगा कि नहीं? क्योंकि स्वभाव बिना वस्तु ही नहीं रहेगी। वो कैसा है? अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, परिपूर्ण है, असहाय है, अर्थात उसे किसी के सहाय की जरूरत नहीं है, अमर्यादित यानी असीम है। जो जो स्वभाव होता है उसको कोई लिमिट नहीं रहते, लिमिटलेस। अभी ज्ञान हमारा स्वभाव है तो किसको जानेगा? कोई लिमिट होगी जानने में? कोई मर्यादा होगी कि नहीं इतना ही जानता है? स्वभाव जो है वो सबको जानेगा, जो को जानेगा, पर को जानेगा, पहले वाले को जानेगा, भूत को जानेगा, भविष्य को जानेगा, सबको जानेगा, यहाँ वाले सामने वाले को जानेगा, दूर वर्ती पदार्थों को भी जानेगा, कोई लिमिट नहीं रहती। इसको कहते स्वभाव। अरहंतों में जैसा स्वभाव है वैसी पर्याय प्रकट की है, परंतु उनका स्वभाव तो उनके द्रव्य में अनादिकाल से ही विद्यमान था। हे जी, तू भी ऐसे स्वभाव से परिपूर्ण है, अभी इसी समय तो अरहंत के समान ज्ञान स्वभावी है। ये हमारी सबकी बात चल रही है कि उनकी तो महिमा आती, अरे अरहंतों ने ये सारा प्रकट किया, कहाँ से किया? स्वभाव में से किया। वो स्वभाव कहाँ से आया? अभी अभी आया होगा, कब से था? अनादिकाल से। तो हमारे में, हमारे में नहीं हो सकता, उसका विश्वास नहीं है ना अभी तो। कि तू भी ऐसे स्वभाव से परिपूर्ण है, अभी इसी समय तू अरहंत के समान ज्ञान स्वभावी है, बस मात्र उस स्वभाव की ओर देखने की जरूरत है। अर्थात अपना प्रकट ज्ञान स्वभाव सम्मुख करके जानने की आवश्यकता है। यानी जानना 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 चल रहा है कि अभी कुछ कास्ट करना पड़ेगा? ज्ञान तो अनादि से है और उसकी पर्याय भी निरंतर हो रही है। हमें मालूम है द्रव्य तो गुण के कारण हर समय में हर द्रव्य के हर गुण की हर पर्याय वो चलती रहती है, एक एक पर्याय चलती रहती है, तो उसमें करना कुछ नहीं हमको। तो ज्ञान जो परसन्मुख है वो अपने ही स्वभाव को जानना है उसको। जिस समय तू स्वयं को जानेगा उसी समय से ये जीव तेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। ये देर नहीं लगेगी, ये कहते ना जिस समय हो आत्मबुद्धि कर्म तरह तरह का आपद है, वो कर्म में उत्सम वगैरह सारा हो जाएगा तो ये सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो मात्र अपनी दृष्टि करने की बस बात है दे है। तो जिस समय तू स्वयं को जानेगा उसी समय से जो तेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, तुझे आत्मानंद का अनुभव होगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, अरहंत सिद्ध बनने की तेरी प्रक्रिया प्रारंभ होगी, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तब से उसी समय से। हे जीव, जिस मार्ग को तूने आज तक कष्टदायक माना था वह मार्ग तो एक महान आनंद यात्रा है। उसमें निरंतर बढ़ते हुए आनंद के साथ तू अनंत सुख की ओर बढ़ता रहेगा, अग्रसर होगा। एक बार तू अपने चैतन्य गुफा में झांक तो सही, आनंद के निधान तुझ पर बरस पड़ेंगे। अरहंत अवस्था में 13वां संयोग केवली और 14वां अयोग केवली दो गुणस्थान होते हैं। अरिहंतन के कितने गुणस्थान है दीपाली, कौन कौन से? पहले कौन सा होगा? 13वां। हाँ, और फिर बाद में अयोग केवली, क्योंकि अभी संयोग वाले को योग का सदभाव है और अयोग वालों का योग का कंपन रुक गया है, वो अयोग केवली। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये केवली के गुणस्थान है। ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था को केवल ज्ञान या क्षायिक ज्ञान कहते हैं। उनके ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण क्षय हुआ है। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को अल्पज्ञ या छद्मस्थ कहते हैं। छद्म यानी ढका हुआ आवरण सहित, जिससे ज्ञानावरण कर्म का सद्भाव यानी आवरण है उसे छद्मस्थ कहते हैं। 13वें और 14वें गुणस्थान के नाम में योग शब्द है। संयोग यानी योग सहित और अयोग यानी योग रहित। संयोग शब्द अंत दीपक है, अर्थात पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान के अंत तक के सभी जीव योग सहित है। हमने पहले योग मार्गणा में देखा था, आत्म प्रदेशों का सकंप होना योग कहलाता है और कंपन रुकना अयोग कहलाता है। कर्म का बंध कैसे होता है इसकी चर्चा हमने पहले की थी। आत्म प्रदेशों के कंपन के कारण यानी योग के कारण कर्म और नोकर्म आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं। इसका अर्थ ऐसा हुआ कि जब तक योग के कंपन का सद्भाव है तब तक कर्म और नोकर्म का ग्रहण होता रहता है। तो संयोगी केवली को कर्म और नोकर्म का ग्रहण होगा कि नहीं होगा? हाँ, और कर्म का? हाँ, योग है तो कर्म का और नोकर्म का ग्रहण होगा कि नहीं होगा? अरिहंत भगवान को, संयोगी गुणस्थान वाले को नोकर्म का होगा, कर्म का नहीं होगा। हिंदू बहन क्या कहती है? एरिया पथास्त्र कौन सी प्रकृति का बंद होगा? कोई तो कर्म बंधेगा ना, बंधेगा ना, आता है जगह। सातावेणी का बंध है, कर्म का बंध है उनको। हाँ, 13वें वाले का योग है ना वहाँ। सारा नोकर्म का भी ग्रहण चल रहा है, वो परम उदारित शरीर वाले परमाणु लेते हैं, हर समय छोड़ते भी है। हाँ, छोड़ते भी है। तो ये वो नाम से हमको उनका स्वरूप पता चलना चाहिए। संयोग है ना, योग है तो योग है, वहाँ सारे नाम कर्म भी है सारे। तो ये शरीर नाम कर्म है, कारमान शरीर नाम कर्म है, तो ये उनका ग्रहण भी चल रहा है। यानी बंधन है चार प्रकार का। ऐसी बात है, देखो ये कौन सा कर्म कहाँ तक लेता है जीव, इसके भी नियम ऐसा है। आयु कर्म तो 7वें तक ही बनता है, उससे आगे आयु कर्म बनता ही नहीं, बांधने की बात है। पहले बंधेगी, उससे पहले बंधेगी, पर वो श्रेणी में किसी को आयु का बंधन नहीं होगा, उपशम वाला हो सकता है पहले बांधी हुई उसमें आई, फिर उपशम में चढ़ेगा वहाँ भी मरेगा, तो वो पहली बांधी हुई आई के साथ वो अगले में वो अनुत्तर विमान में चला जाएगा, ऊपर देवो में चला जाएगा, ऐसे ऐसे नियम है। अब मोहिनी कब तक बंधेगा? दसवें में भी नहीं बंधेगा, नौवे तक भी बंधेगा, क्योंकि सूक्ष्म लोग है ना, तो नहीं बंधेगा। अब ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कहाँ तक बंधेंगे? वो तो दसवें के अंत तक बंधेगा, बारहवें में उसका बंद रुक गया है, अभी उदय है, तो इसकी चर्चा भी यहाँ नहीं करेंगे, वो तो डिटेल सूक्ष्म चर्चा है, यानी और उसमें ज्यादा डिटेल में जाए तो और उसमें है तो बहुत इंटरेस्ट है, उन पहले ये हम मूल में समझेंगे फिर आगे जाएंगे। तभी रहे अरहंतों को तो चार आघाती है, साता हाँ ये साता असाता है, आयु है, आयु तो बंद नहीं है, उदय होगा कि नहीं आयु का? हाँ उदय होगा ना, उदय तो चौदह के अंत तक होगा, चारों का ही उदय चल रहा है उनको, परंतु ये बंद अकेले सातावेदने का होगा, नाम कर्म भी नहीं बांधेगा, गोत्र भी नहीं बांधेगा, आयु भी नहीं बांधेगा, हालांकि उदय चल रहा है, इसलिए चार अघाती कर्म भी है, और वो सातावेदने का भी बंद कैसे होगा, अभी कैसा है कि नहीं है, तो हमने बंद चार प्रकार से देखा था, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग। स्थिति और अनुभाग कैसे बनते हैं? अभी इनको स्थिति और अनुभाग बंधे के नहीं बंधेंगे, नहीं बंधेंगे, यानी स्थिति एक समय मात्र की स्थिति उसमें नहीं पड़ेगी, तो प्रकृति और प्रदेश संख्या में विशिष्ट आनंद परमाणु आएंगे और उसी समय में चले जाए, एक समय भी अधिक रुकेंगे नहीं वहाँ, उसको कहते ईरिया पथा स्रव, हाँ जाने के लिए आते वो कर्म का बंध कैसे होता है, इसकी हमने पहले चर्चा की थी। आत्म प्रदेशों के कंपन के कारण यानी योग के कारण कर्म और नव कर्म आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं। इसका अर्थ ऐसा हुआ कि जब तक योग के कंपन का सद्भाव है तब तक कर्म और नव कर्म का ग्रहण होता रहता है। कौलाहार न होने पर भी जीव अरहंत अवस्था में लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहता है, क्योंकि वहाँ नव कर्म वर्धना का ग्रहण निरंतर चालू रहता है। अरहंतों का शरीर परम औदारिक शरीर है, जब जीव जब बारहवें गुणस्थान में प्रवेश करता है उस समय से लेकर बारहवें गुणस्थान के अंतर्मूर्त काल तक उसके शरीर के आधार से रहने वाले बादर निगोद जीव सूक्ष्म क्यों नहीं कहे? हाँ वेरी गुड, सूक्ष्म जीव किसी के आधार से नहीं रहते, तो बादर निगोद जीव निकल जाते हैं और तेरहवें गुणस्थान के पहले समय में औदारिक शरीर परम औदारिक बनता है। समय है क्या भी और? एक पैराग्राफ पढ़ लेते चलो। तीर्थंकरों एवं कई अरहंतों की दिव्य ध्वनि खिड़की है, यानी अभी तेरहवें गुणस्थान में क्या क्या होता है इसकी बात करेंगे। भव्य जीवों को उनसे मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त होता है, अरहंतों का विहार भी होता है, परंतु उनको आहार यानी भोजन नहीं होता, इस बात की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अरहंत अवस्था में कोई भी उपसर्ग नहीं होता, पहले मुनि अवस्था में उपसर्ग हो रहा हो तो वह भी मिट जाता है। ये कल ले लेंगे, कौन सी प्रकृतियाँ कितना क्या है। जावानी के ज्ञानत सुझे लो पालो तो आने मस्तक नवो सदा देतो।